हमारी पार्लियामेंट में आजकल एक कानून जेरे बहस है और उम्मीद यही की जा रही है कि शायद वो मंजूर हो जाए कि पहली जमात से लेके 10वीं जमात तक बच्चों को अरबी जुबान जो है उसका इल्म दिया जाए। आप क्या समझते हैं, इस तरह के कानून अगर सामने आते हैं तो क्या ये कोई खुशाइन बात है, और सामने आने के बाद इनकी अमली सूरत में अगर आप कोई रहनुमाई कर सकें कि कैसे वो जुबान अरबी पढ़ाई जाए कि जिससे उनका रिश्ता जो है अपनी मजहबी रिवायत से भी मजबूत हो सके।
मैं इस पर लिख चुका हूँ मेरी किताब मकामात में, निज़ाम तालीम पर जो मजामीन हैं उनमें मैंने अपनी राय इस मामले में दे दी है। उसी का खुलासा आपके सवाल के जवाब में अर्ज कर देता हूँ कि जिस वक्त आप पहले 12 साल का तालीमी निज़ाम बनाते हैं, पहले 12 साल असल में माशरा तालीम देता है, यानी मैं अपने बच्चे को तालीम देता हूँ, मेरा माशरा बच्चों को तालीम देता है, इसमें एक कौम अपना इल्म अपनी मीरास मुंतकिल करती है और वो ज़रूरी सलाहियत पैदा करती है कि जिस वक्त मैं या मेरा बच्चा शऊर की उम्र को पहुँचे, वो अपने फ़ैसले ख़ुद कर सके, तो वो अपने मैदान का भी इंतखाब करने में आसानी महसूस करे। तो ये जो पहले 12 साल की तालीम होती है, इस 12 साल की तालीम में एक बहुत बड़ा फ़ैसला ये करना होता है कि बच्चों को लैंग्वेजेस कौन सी पढ़नी है, ज़ुबानें कौन सी पढ़नी है, इसलिए कि ज़ुबान इल्म का दरवाज़ा है। तो आप ये देखिए कि इसमें बड़े सादा उसूल हैं, यानी आपको अपनी तालीम की इब्तदा अपनी ज़ुबान से करनी चाहिए। अपनी ज़ुबान का मतलब है वो जो आपकी माँ बोलती है, जो आपके घर में बोली जाती है। घर की ज़ुबान और तालीम की निज़ाम ज़ुबान को इब्तदा में बिल्कुल मुश्तरक होना चाहिए। इस पर दुनिया भर में अहले इल्म का इत्तेफाक है। एक बच्चे को आप पहले ही मरहले में ज़ुबान के इस तसादुम में नहीं डाल सकते। ज़ुबान वो अपने माँ बाप से सीखता है, जब वो एक ज़ुबान सीख लेता है अपने माँ बाप से तो उससे आप तालीम की इब्तिदा कर दीजिए, इसके बाद आप मुख्तलिफ ज़ुबानें उसको सिखाते हैं, उसमें फिर एक तदरीज रखी जाती है। यानी ये नहीं है कि आपने पहली जमाती से बच्चे को किसी एक ज़ुबान में भी सेहत के साथ बोलने की तरबियत देने से पहले या लिखने की तरबियत देने से पहले उसके अंदर एक खलजान पैदा कर दिया, एक तदरीज के साथ आप ज़ुबानें इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो किस उसूल पर होती हैं? वो इस उसूल पर होती हैं कि राब्ते की ज़ुबान सीखनी पड़ती है, इसलिए कि आप एक दुनिया में रहते हैं। राब्ते की ज़ुबान बाज़ औक़ात कोई कौमी ज़ुबान बन जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ लोग पश्तो भी बोलते हैं, हमारे यहाँ लोग सिंधी भी बोलते हैं, बरोही भी बोलते हैं, बलोची भी बोलते हैं, लेकिन उनके यहाँ राब्ते की ज़ुबान की हैसियत उर्दू को हासिल हो चुकी हुई, इसीलिए हम उसको अपनी कौमी ज़ुबान भी कहते हैं। तो ज़ाहिर है कि राब्ते की ज़ुबान सीखना नागुज़ीर होता है, वरना लोग अपनी अपनी जगह पड़े रह जाएंगे, उनके यहाँ एक कौमी वहदत भी पैदा नहीं हो सकेगी, कौमी मामलात में कौमी इदारों में तबादला ख्याल में मुश्किल पेश आएगी, तो ये एक ज़रूरत होती है। इसके बाद आप देखते हैं कि दुनिया अब एक विलेज बन चुकी हुई है, दुनिया में उलूम मुख्तलिफ जगहों पर पैदा हो रहे हैं, आप एक ही जगह पर नहीं रहते बल्कि आपको आगे भी बढ़ना होता है, तालीम के लिए भी दूसरी जगहों पर जाना होता है, हिजरतें भी करनी होती हैं, तो आप आलमी सतह पर ये इंतखाब करते हैं कि राब्ते की ज़ुबान क्या बन सकती है। हमारे यहाँ एक ख़ास पस मंज़र की वजह से अंग्रेज़ी बन चुकी है, दुनिया में बहुत सी जगहों पर फ्रांसीसी है, बहुत सी जगहों पर हस्पानवी है, और भी ज़ुबानें हैं, तो बहरहाल कोई एक ज़ुबान आप बैनुल अक्वामी राब्ते की ज़ुबान की हैसियत से सीखते और सिखाते हैं। फिर ये है कि आपका मज़हब इस्लाम भी हो सकता है, हिंदू मत भी हो सकता है, आपके मज़हब की ज़ुबान जिसमें आपकी मज़हबी किताब है या मज़हबी किताबें हैं या मज़हबी इल्म है, तो वो भी कोई ज़ुबान हो सकती है। हमारे यहाँ वो अरबी ज़ुबान है,
ठीक,
तो इस वजह से वो ज़ुबान भी सिखानी चाहिए। तो ये ज़ुबानें ज़रूर सिखानी चाहिए। इसमें एक चीज़ ये होती है कि एक ज़ुबान आप सिखाते हैं इस मकसद के लिए कि इसको बोलेगा भी, इसको पढ़ेगा भी, इसको समझेगा भी, इसको लिखेगा भी, ये मामला होता है। कुछ ज़ुबानें आप सिखाते हैं इस मकसद के लिए कि उन उलूम तक रसाई हो जाए, तो अरबी ज़ुबान मेरे नज़दीक इस मकसद के लिए कोई सिखाना ज़रूरी नहीं है कि लोग उसमें लिखें या उसको बोलें, नहीं, उसकी बहुत अच्छी कम्प्रीहेंशन पैदा हो जाए ताकि वो अल्लाह की किताब जिसको वो मानने वाले हैं उसको बराह रास्त पढ़ सकें। उन्होंने उसको कल छोड़ देना है खुदा न खास्ता तो पढ़ के छोड़ें, उन्होंने उसको समझना है तो पढ़ कर और ख़ुद समझ कर उस पर अमल करने के काबिल हो जाएं, उनको उसकी मुख्तलिफ ताबीरात में इंतखाब करना है तो उसमें भी उसकी मराजत कर सकें, तो ये चीज़ होनी चाहिए। और मैंने तो उसमें यह तजवीज़ किया है कि बच्चों पर ताकि कोई बार ना पड़ जाए तो आप लैंग्वेजेस ही को बुनियाद बनाएं और अरबी ज़ुबान का निसाब इस तरीके से बनाएं कि वो पहले मरहले में बच्चे को وہ ضروری چیزیں سکھانے کا باعث بن جائے جو ایک مسلمان بچے کی ہمہ وقت ضرورت ہوتی ہے. یعنی اسے نماز پڑھنی ہے, اس نے کچھ دعا کرنی ہے, اس نے اپنے پیغمبر کی کسی بتائی ہوئی چیز کو دہرانا ہے, یا اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ بہت معمولی ہیں, بڑی جلدی بچے سیکھ جاتے ہیں. اور اس کے بعد اس کے لیے ریڈر کی حیثیت بتدریج قرآن بن جائے, یہاں تک کہ وہ 12 سال تک پہنچتے پہنچتے قرآن مجید پورا کا پورا ایک, یعنی جس طریقے سے آپ انگریزی زبان کا ایک ریڈر پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ لے. یوں نہیں کہ اس کی تفسیر سکھانی ہے آپ کو اور اس کو, بلکہ وہ ایک کتاب کی حیثیت سے اس سے وابستہ ہو جائے کہ اس کو پڑھ سکتے
ہیں. یعنی زبان سیکھے وہ مشق قرآن ہی پر کرے,
قرآن ہی پر مشق کرے. اور یہ جو باقی ہمارے یہاں اسلامیات اور فلاں اور اس طرح کی چیزیں داخل کی ہوئی ہیں اور بوجھ ڈالا ہوا ہے بچوں, اور ختم کر دیجیے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف چیزوں کو بعد میں علمی طور پر جاننا, تاریخ سے واقف ہونا یا مسلمانوں کی تاریخ سے واقف ہونا, یہ آدمی کر لے گا بعد میں. تاریخ بھی آپ کو پڑھانی ہے اگر, تو تاریخ کے طور پر پڑھائیے, اس کو مذہبی چیز بنا کے نہ پڑھائیے. اس میں پھر آدمی کے اندر نقد تبصرہ چیزوں کو جاننے کا صحیح دائرہ پیدا ہوتا ہے. تو میں نے یہی تجویز کیا ہے, یہاں تو ظاہر ہے میں مختصر بات کر رہا ہوں, اگر آپ میرا وہ مضمون پڑھیں تو اس میں میں نے اپنی تمام تجاویز ترکیب کر کے بیان کر دی.